ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 10 श्लोक नंबर 19।
अहम् च योगेश्वर आत्मतत्त्वा विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै। प्रष्टुं प्रवित्त किमिहारणं तत् साक्षाद् हरिं ज्ञानकलावतीर्णम्।
शब्दार्थ अहम् मैं च तथा योगेश्वरम् योग के स्वामी आत्मतत्वविदाम आत्मतत्व के विज्ञान से परिचित विद्वान मुनिनाम मुनियों का परमम श्रेष्ठ गुरुम गुरु उपदेशक वै निस्संदेह प्रष्टुम पूछने हेतु प्रवृत्त कार्य संलग्न किम क्या इह इस संसार में अरणम सुरक्षित शरण तत् वह जो साक्षात हरिम प्रत्यक्ष श्री भगवान ज्ञान कला अवतीर्णम जो संपूर्ण ज्ञान के अवतार के रूप में अंशधारी कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। अनुवाद, मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूं। आप आत्मज्ञान से भलीभांति परिचित है, आप साधुओं में परम पूज्य है और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 6:47 में श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर दिव्य प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे, पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे किंतु भगवान कपिल देव से समस्त ज्ञान उन्होंने विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद्य में की है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है। जड़ भरत जैसा महापुरुष भगवान के ही तुल्य है क्योंकि अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर जड़ भरत को भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसीलिए महाराज रघुगण ने यह निश्चित किया कि उन्हीं से आत्मतत्व के संबंध में क्यों ना पूछा जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। यहां इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्मतत्व जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषते द्वेषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहम् च योगेश्वरमात्मतत्त्वः विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवित्तः किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से ही मैं कुछ भगवान के विषय में बोल सकता हूँ, तो आप सभी लोग कृपा करें। तो हम इस प्रसंग को जड़ भरत जी के जो प्रसंग महाराज रघुगण के प्रसंग को सुनते आ रहे हैं कुछ दिनों से। इससे आगे श्लोक में कहा गया है कि महाराज रघुगण कहते हैं नाहम विशंके सुरराज वज्रात। मैं सुरराज अर्थात इंद्र देवताओं का राजा उसके वज्र से न विशंके है, मुझे डर नहीं लगता है, और नहीं जो त्रिनेत्र वाले शिवजी के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता है। न यमश्च दंडात न मृत्यु पश्चात, जो पापियों को दंडित करने वाले यमराज के दंड से भी मुझे भय नहीं लगता है। न अग्नि से न अर्क न सूर्यदेव से न सोम न चंद्रमा से न वायु से न वित्तपह न कुबेर के अस्त्रों से, इन सब से मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल। तो जड़ भरत जी पूछ सकते हैं कि आपको डर किससे लगता है? तो कहते हैं ब्रह्म कुला अवमानात, ब्राह्मणों के अपमान से मुझे भृशम मतलब बहुत डर लगता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों की अपराध नहीं होने चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ क्या है, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब ब्राह्मण तो वेदपाठी होते हैं, यजन याजन पठन पाठन करते ही है, उनके अपराध नहीं करने चाहिए, उनके अपमान नहीं करने चाहिए। यहां वो कौन कह रहा है? स्वयं महाराज रघुगण कह रहे हैं। तो वैष्णवों के बारे में तो कहना ही क्या है ना, क्योंकि सभी ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते हैं। लेकिन वैष्णव जो है, ब्राह्मण के जितने भी उन गुण होता है, अच्छे गुण सारे वैष्णव में विद्यमान होता है। इसीलिए वैष्णव जन ब्राह्मणों से भी महान होते हैं। तो आज हम यहां पे इस श्लोक में चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस श्लोक में श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वस्य ज्ञानार्थितम दर्शयति। स्वस्य मतलब महाराज रहुगण ज्ञानार्थितम, इसको दर्शित किया गया है। अब यहां पे जरभरत जी पूछ सकते हैं कि ननु त्वमेव स्ववृत्तांतम कुतो न कथयसि। आचार्य लोग कहते हैं कि हमने तो बता दिया हम कौन हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं आप ही बताए कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, आप ही अपना वृतांत सुनाओ। तो इसके बारे में कहते हैं कि अहम इति अहम च योगेश्वरम प्रष्टुम प्रवित्त। मैं योगेश्वर, योग के जो ईश्वर, उनको पूछने के लिए मैं कहीं जा रहा हूं। तो फिर जड़ भरत जी पूछते हैं किम प्रष्टुमिति, क्या पूछने जा रहे हैं आप, क्या पूछने जा रहे हैं? तो इस पे कहते हैं इह इत संसार में, इस संसारे यद अरणम शरणम तत् किम इति प्रष्टुम। कहते हैं कि इस संसार में शरण लेने, एकमात्र शरण लेने योग्य, आप अच्छे से सुनेंगे, क्या पूछने जा रहे हैं महाराज रहुगण? इस संसार में, पूरे संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, ये पूछने के लिए मैं जा रहा हूं। तो पूछ सकते हैं कि आप जा कहां रहे हो, कौन कौन है वो व्यक्ति, किससे पूछने जा रहे हो, क्वा असो। तो इस पे कहते हैं योगेश्वरम इति ही। तो कहते हैं योगेश्वरम इति आह। तो कहते हैं साक्षात इति ज्ञान कलया अवतीर्णम। इसमें आया है ज्ञान कलया अवतीर्णम, आप अंतिम में देखेंगे साक्षात हरिम ज्ञान कलया अवतीर्णम। ये सारे विशेषण भगवान कपिल के लिए आया है, कपिल भगवान के लिए। तो यहां पे कहते हैं कि जो ज्ञान कला से अवतीर्ण हुए हैं, भगवान की ज्ञान शक्ति से, ज्ञान कला से जो अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिए हैं, ऐसे साक्षात हरिम, यहां पे जो साक्षात हरिम शब्द आया है वो भगवान कपिल देव के लिए आया है। उन कपिल देव को पूछने के लिए मैं जा रहा हूं। तो यहां पे क्या पूछना था? इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, ये पूछने के लिए कौन जा रहा है? महाराज रहुगण जा रहे हैं। ये किसने पूछा था? जड़ भरत जी ने पूछा था। आप लोग सुन रहे थे काफी दिनों से कि जड़ भरत उनको इसीलिए कहा गया है कि वो जड़ जैसे जड़ सम्मान रहते थे। मैं ज्यादा कथा नहीं बोलूंगा पूर्वज में, क्योंकि आपने बहुत बार सुने हैं। वास्तव में जड़ भरत जी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और ब्राह्मण का काम होता ही है यजन याजन पठन पाठन करना, है ना, पढ़ाए पढ़े और दूसरे को पढ़ाए, यज्ञ करें और दूसरे को करवाए, ये ब्राह्मण के कर्म है। तो उनके पिताजी ने बाल्यकाल में उनको काफी पढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब तीन मास तक बीत गया, गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ उनको जड़ भरत जी को, तब उनके पिताजी काफी प्रयास किए, उसके बाद में हिम्मत नहीं हारे, और प्रयास कर करके उनके पिताजी का देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया, प्रयास कर करके उसी में उनका शरीर समाप्त हो गया। क्यों, क्या जड़ भरत वास्तव में मतलब जड़ थे क्या, वो पागल थे क्या, क्या उन्मत्त थे क्या, ऐसे वो पढ़ने क्यों नहीं चाह रहे थे, इसमें कारण क्या था, क्यों नहीं, जो भी कुछ बोलते थे ठीक विपरीत करते थे सारे। तो इसीलिए कि संसार में जब हम पढ़ते हैं कुछ जानते हैं, तो उस जब कुछ पढ़ाई करते हैं कुछ हमें जानकारी होती है, कुछ ज्ञान होता है, उससे अहंकार ही होता है हमें, रहता है कि नहीं होता है। डॉक्टर बन गया तो आपको डॉक्टर के काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, पढ़ाई किया तभी तो फंस गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम पढ़ाई करते हैं, बाहर की जो शिक्षा लेते हैं दूसरे की नौकर बनने की तैयार कर रहे हैं अभी से ही, है कि नहीं है, कोई तो हंस रहे हैं, हो सकता है ना भी हो, है ना। हाँ, इतने पैसे खर्च कर करके, समय खर्च कर करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना मतलब दूसरे की नौकर बनना भाई, उसके लिए अभी से शुरू से ही उसको तालीम दिया जाता है बच्चों को, पढ़ो 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 फिर काम करो, दूसरे की नौकर करो। इसीलिए जड़ भरत जी सब जानते थे ये सारा संसार का प्रपंच कैसे होता है, अगर मैं पढ़ूंगा पंडित होऊंगा तो मुझे काम में लगाएंगे, थोड़ा मुझे जानकारी होगी, है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति के पास कोई भी प्रकार की जानकारी होगा तो उसी जानकारी व्यक्ति को ही बोलेंगे काम करने के लिए, जो नहीं जानता उसको कोई नहीं बोलता, अरे ये कुछ जानता ही नहीं है छोड़ो इसको, मारो उसको, बोलते ही नहीं है छोड़ो ये तो वैसा ही है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उनको काम में लगाते हैं हम लोग। तो जड़ भरत इसीलिए वो मस्त रहते थे, कोई प्रवाह नहीं, उनकी अवस्था कौन सी थी, मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूत अवस्था में रहते थे वो। एक बार तो हद ही हो गई, उनको खेत में, आप लोग सुन रहे थे, खेत में चिड़िया उड़िया भगाने के लिए हिरण आदि खा जाते थे, अब काफी सारे उनको काम अलग अलग काम दिया गया, सारे उल्टे करते थे वो। तो खेत में उनको बोला कि आप थोड़ा चिड़िया उड़िया भगाओ वहां से, तो वो तो आराम से बैठ करके देखते थे, चिड़िया आकर के खाती थी, हिरण वगैरह खाते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, वास्तव में काम दिया गया था उनको भगाने के लिए। कुछ कुछ साधु लोग व्यंग करते हैं, बोलते हैं राम की चिड़िया राम का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट वो ऐसे रहते थे, राम का चिड़िया है राम का खेत है और खाओ जो भी राम का ये सारा चीज तो ये जड़ भरत की यह स्थिति थी। मैं थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा कि जड़ भरत की कैसी स्थिति थी, यहां तक कि उनको जो काली माँ के भक्तों ने पकड़ के ले गए तभी भी मौन रहे, चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले, कम से कम प्रतिकार तो कर सकते थे, मुझे लेके मत जाओ, है ना, कुछ तो बोल सकते थे। अगर हम में से किसी को पकड़ के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे, अरे पहले ही हाथ पैर चलाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जड़ भरत जैसे रहेंगे, नहीं कोई नहीं रहता। उनकी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में उन्होंने लाया, कौन सा ज्ञान है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में उन्होंने उतारा। इसका प्रमाण तो आप कितने दिन से आप सुनते आ रहे हैं कथा। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, जब खिलाया पिलाया, जब बलि की बारी भी आई तभी भी चुप रहे, मौन रहे, अंतिम में माँ वैष्णव देवी ने सबको वहीं पे प्रकट होके सबकी संहार कर दिया उनकी उल्टी। उसके बाद में अभी जो प्रसंग चल रहा था, महाराज रघुगण उनकी पालकी में बैठ करके आ रहे थे, तो किसी की आवश्यकता एक है ना उठाने वाले की जरूरत पड़ी, तो उनको पकड़ के ले गए, तभी भी नहीं बोले। तब तो बोल सकते थे कि मैं ब्राह्मण परिवार का हूं, मैं जनेई धारण किया, मेरे संस्कार है, यह मेरा कर्म नहीं है, बोल सकते थे। बोले नहीं, बोले चुपचाप लग गए काम में, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन यहां पे जो अभी ये श्लोक है, इसमें जर भरत जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं यहां से, तो इसके उत्तर में यहां पे बोलते हैं कि मैं जो कहां जा रहा हूं, यहां पे कहते हैं ना, विदाम मुनि नाम परमम गुरुम वह योगेश्वरम आत्मतत्वम विदाम मुनि नाम। यहां पे सारे कपिल मुनि के विशेषण के लिए आया है। कपिल मुनि कैसे हैं, कैसे कपिल मुनि है, उन कपिल मुनि को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। क्यों ढूंढने के लिए जा रहे हैं, कि उनसे यह प्रश्न पूछना है कि इस संसार में शरण लेने योग्य, एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, यह पूछने के लिए मैं कपिल महाराज के पास, कपिल मुनि के पास मैं जा रहा हूं। तो वो कपिल मुनि कैसे हैं, कहते हैं कि योगेश्वरम आत्मतत्वम विदाम, कहते हैं कि वो योगेश्वर है और आत्मतत्व विदाम मुनि नाम, आत्मतत्व जानने वाली मुनियों के, ये आपको समझना पड़ेगा कौन है वो, जो मुनि ऋषि मुनि गण आत्म के तत्व के विषय में जानते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इसको वास्तविक जानते हैं, और अपने जीवन में ना केवल जानना काफी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, उतारते हैं, ऐसे मुनियों के परम गुरु है, कौन है, कपिल देव। कोई साधारण कपिल देव नहीं है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो आप आत्म के तत्व के विषय में जानते हैं, मुनि नाम अमल आत्मा नाम, अमल आत्मा जिसका हृदय एकदम साफ हो चुका है, इतना सा भी जिनके हृदय में कोई मैल नहीं है, संसार के प्रति भोग लालसा कुछ भी नहीं है, ऐसे मुनियों के कौन है वो, गुरु है। हाँ, परमम गुरुम वे, ऐसे गुरु साक्षात हरिम, इसमें साक्षात हरिम जो अंतिम पद में आया है, तो साक्षात हरिम भगवान कपिल के लिए आया है। तो ऐसे भगवान की ज्ञान कला के अवतार कपिल मुनि से प्रश्न करने जा रहा हूं कि इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, क्योंकि महाराज रघुगण कोई साधारण राजा नहीं थे। इससे तो स्पष्ट हुआ ना कि उनका लक्ष्य, उनका सफर जो था, जिस समय वो जर भरत जी मिले उनसे, तो उनका सफर इतना था कि उनको ज्ञानार्थी थे, वो कुछ ज्ञान अर्जन करना था। शरण लेने योग्य कौन है एकमात्र, उनके विषय में जानकारी करना था, इसीलिए वहां से पालकी में बैठ करके चले गए। तो हम भी, हमारे जीवन में भी हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, सफर करते रहते हैं। सफर ऐसा हो जिसमें वैष्णवों का संग हो, पहली बात है कि नहीं, कम से कम वैष्णवों की संग होनी चाहिए। अगर साधु संग होगा, जिस जगह पे जाने से साधु संग होता ही नहीं है, तो ऐसे जगह में जाने का कोई फायदा है, नहीं है। क्यों, जहां पे साधु संग नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, कर्मियों के संग होता है ना, वहां पे यही सिखाया जाएगा कि इस संसार में कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे बच्चा पैदा करना है, कैसे भोग करना है, यही तो सिखाया जाएगा। लेकिन जब साधुओं के पास संगति करने जाते हैं, तो साधु लोग हमें क्या सिखाते हैं, भक्त लोग क्या सिखाते हैं, कैसे भजन करना, भगवान की सेवा कैसी करना, इस संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार से कैसे मुक्त होना, ये सारे मार्ग भागवत सुनाते हैं, ये सारे तो भगवान के भक्तों की संगति से ही होता है। तो हमें भी जब भी कहीं भी सफर जाते हैं, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि या तो ज्ञान अर्जन के लिए जाए, या फिर दर्शन के लिए जाए, या फिर कुछ भक्तों की संगति के लिए जाए, है ना। इसमें कारण जो है भगवान की भक्ति ही होनी चाहिए। तो यहां पर इस श्लोक में हम देखते हैं काफी सारे विशेषण आया है भगवान कपिल के लिए। वास्तव में महाराज रहुगण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साधारण राजा नहीं थे। राजा के पास कौन सी चीज की कमी होती है? कोई कमी नहीं होती है। फिर भी वो किसी के शरण में जाना चाहते थे, ढूंढ रहे थे कि मैं किसके शरण में जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या पूछूं। तो उस समय में, उस समाज में, पूरी संसार में प्रख्यात था कि भगवान कपिल देव, जो भगवान के साक्षात अंश अवतार है, तो उनके पास सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। तो महाराज रहुगण भी उनके मन में यह प्रश्न था कि इस संसार में शरण लेने योग्य एकमात्र कौन है। वह जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान कपिल मुनि के पास जा रहे थे। तो रस्ते में यह घटना घटी। तो यहां पे एक शिक्षा प्रद है कि आदमी चाहे, मनुष्य चाहे जितना भी, कितने बड़े पद में क्यों ना हो, मनुष्य चाहे भौतिक ज्ञान से कितना भरा पड़ा क्यों ना हो, उसको हमेशा गुरु और साधुओं की खोज में जानी चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अविगच्छेत। उस विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह गुरु के पास जाना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे महाराज रहुगण गुरु के खोज में, कपिल मुनि के खोज में जा रहे हैं, और वहां पे यह घटना घटी। जड़भरत जी मिले, फिर उनको पालक में वो ढो रहे थे, तब सारे घटना घटी, तब वहां पे उनके वार्तालाप हुआ। पहले तो उन्होंने जब, जिस तरह से महाराज रहुगण ने कुछ अपमान तो नहीं, कुछ ऐसे शब्द कह दिए उनको, है कि नहीं, आप हट्टे कट्टे भी नहीं लगते हो, आप बूढ़े हो गए हो, है कि नहीं, आपके पास कोई ताकत भी नहीं है, है ना, मतलब उल्टी भाषा में बोल दी उन्होंने। वास्तव में जड़भरत जी कहते थे एकदम हट्टे कट्टे थे, खाए पिए हुए थे, एकदम शरीर स्वस्थ था, जवान थी उनकी, लेकिन ठीक विपरीत बोल दिए किसने, महाराज रहुगण ने। लेकिन उसके उत्तर में जड़भरत जी बोले कि हाँ, आपने सही कहा, आप जो भी बोल रहे हैं ना सही है, मेरे लिए ठीक बैठता है। तब महाराज रहुगण को लगा कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर ऐसे चीज को किसी और को बोल देता तो क्या होता है। अगर सुंदर व्यक्ति को, संसार में जो अधिक सुंदर होते हैं, उसको बोल दो आप कितने कुरूप हो, तो क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा वहां पे, झगड़ा हो जाएगा वहां पे। हाँ, कोई धनी व्यक्ति को बोल दो आप तो कंगाल हो, क्या हो जाएगा फिर एकदम समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन जड़भरत जी वो तो, मतलब जो आत्मा के स्वभाव में थे, उनका ये सिद्धांत था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पूर्व जन्म के भी संस्कार थे उनपे, भूले नहीं थे, यहां तक कि वो, उनको ये हरिण का जब योनि मिला था उनको आसक्त होकर के, तभी भी वो दूसरे हरिणों के साथ, हिरण के साथ में कभी मिलजुल के नहीं बैठते थे, वो अलग से चरते थे, एकांत में अलग से हुआ करते थे। उनको यह डर था कि मैं फिर से फंस ना जाऊं संसार में, क्योंकि उन जो भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से पूर्व जन्म के सारे चीज याद था उनको, मैं कैसे हिरण बना गए थे। तो वास्तव में वो गंडकी नदी के आसपास में गए थे, पूरे जब राजा भरत जब थे, महाराज थे, सारे राजपाट त्याग कर करके भगवान की भक्ति करने के लिए एकांत जगह में चले गए थे, हुआ क्या, आसक्त हो गए। ये भी हमारे लिए शिक्षा प्रद है। कभी कभी हम लोग अपने परिवार छोड़ करके, समाज छोड़ करके, सारे चीज छोड़ करके हम वृंदावन धाम में या कहीं भी हम भजन करने के लिए आते हैं, तो ये भी सावधानी से, बहुत सावधानी से भजन करनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं, अगर हम सावधान असावधान रह जाएंगे तो हमें भी यह शिक्षा मिलता है कि माया इतनी प्रबल है कि कभी भी किसी को भी पकड़ सकती है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया पार करना अत्यंत कठिन है। यहां पर यह भी शिक्षा प्रद है। तो इस प्रसंग में किसकी शरण लेनी चाहिए, इसमें श्रीमद् भागवतम में एक कथा आता है, लगभग आप लोग सुने हैं कि एक बार सरस्वत यास तते राजन ऋषय सत्रमाशतः वितर्क संभूतेषाम त्रिवश दीते दीशेषु को महान। एक बार सरस्वती नदी के तट पर वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनिया एकत्रित हो रहे थे, ब्रह्म वो है ना यज्ञ वज्ञ कर रहे थे। तो उन ऋषि मुनियों में वितर्क हुआ, तर्क हुआ। तर्क क्या था कि संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, जिस प्रसंग अभी आ रहा है, अर्थात सबसे महान देवता कौन है, सबसे महान भगवान कौन है। श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंद में यह कथा आता है। तो ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और उन्होंने एक ऋषि को, एक मुनि को प्रतिनिधि बना दिया। वो थे भृगु मुनि। भृगु मुनि क्योंकि वो ब्रह्मा जी के कौन थे, वो पुत्र थे, इसीलिए ऋषियों के प्रतिनिधि के एक भृगु मुनि वहां पे उनको बोला कि आप जा करके इसकी परीक्षा ले कि वास्तव में संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है, या फिर सबसे महान भगवान कौन है। अरे महान में से सब ऋषि मुनियों में निचोड़ निकाला, इनमें से तीन ही बचे। हाँ, 33 कोटि देवी देवताओं को निकाल करके इनमें से छांट छांट करके तीन बचे। कौन थे वो? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रह गए। और किसी की तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। संसार में आज भी सभी के मन में यह डाउट होता है कि हमें शरण वास्तव में किसकी लेनी चाहिए। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद जी के असीम कृपा से, है ना, प्रभुपाद जी की असीम दया से हमें ये, हम इस मार्ग में नहीं भटक रहे हैं। हमें तो पता चल रहा है कि हम संसार में शरण लेने योग्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, बस, है कि नहीं। लेकिन आज भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह शंका रहती है कि वास्तव में हम शरण किसकी ले, और वो भी अपने अपने गुणों के अनुसार, है ना। जो तमोगुणी होता है भूत प्रेत की पूजा में लग जाते हैं, जो रजोगुणी होता है वो है देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है, और जो सतोगुणी होता है तब विष्णु की उपासना करता है। तो इसमें भी ऋषि मुनियों में भी तर्क हुआ, चलो इन तीन देवों में से जा करके इनको परीक्षा लेते हैं। तो भृगु मुनि को प्रतिनिधि बना करके भेज दिया, चले जाए। तो भृगु मुनि गए, पहले तो कहां गए, अपने पिताजी के पास ब्रह्मलोक चले गए। वैसे जब पुत्र पिता को देखता है या कहीं से भेंट करता है जाकर के मिलता है तो उसको सदाचार होना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, चरण स्पर्श करनी चाहिए, ये परंपरा है, एक सदाचार है। लेकिन इस बार तो उनका लक्ष्य कुछ और ही था, उनको तो पता लगाना था कि वास्तव में कौन महान है, कौन शरण लेने योग्य है। तो गए जाकर के, इस बार प्रणाम नहीं किए सीधे, ना उनकी वंदना की, ना स्तुति भी नहीं की, ऐसे ही। तो ब्रह्मा जी सोचे कि आज इसको हो क्या गया, है तो पुत्र है, वैसे तो रोज जब भी दर्शन के लिए आते थे तो प्रणाम करते थे, है ना, चरण स्पर्श करते थे, आज तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो भी एक तरह से उनकी जो अलग प्रकार के, है ना, वो स्वभाव को देख करके वो आश्चर्य हो गए, उनको क्रोध भी आया कि मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया। लेकिन क्रोध को दिखाए नहीं, अंदर ही अंदर घुट वही चले गए। जैसे अग्नि को पानी, जैसे अग्नि है तो पानी डाल देता तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे अंदर ही अंदर उस क्रोधाग्नि को खत्म कर दिए। लेकिन भृगु मुनि समझ गए क्योंकि मैंने प्रणाम नहीं किया इसलिए ये क्रोधित हो गए, ये तो महान नहीं हो सकते, ये शरण नहीं दे सकते, एकमात्र शरणा नहीं नहीं हो सकता है। तो वहां से जैसे तैसे भाग गए भृगु मुनि। अब गए कैलाश पर और कैलाश में भगवान शिव पार्वती के संग बैठे हुए थे। तो भृगु मुनि आ रहे थे तो उन्होंने देखा तो जोर से जा करके भाग भाग करके आलिंगन करने चले गए क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र है दोनों। तो जाकर के आलिंगन करने के लिए तो भृगु मुनि ने कहा जाओ जाओ, नहीं नहीं हम आलिंगन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप विपथगामी हैं। विपथगामी कहते हैं कि आप मतलब अच्छे मार्ग पे नहीं चल रहे हो। देखो नाक लपेटे हुए, सर पर ऊपर लपेटे हुए, कोई न रहने की ठिकाना न बसने की ठिकाना, पूरे भस्म लगा करके पूरे शरीर में राख लगा करके घूमते हो पागल जैसे, फिर हमें आलिंगन नहीं करना है। इतना बोलते ही त्रिशूल लेकर के ऐसे लगा कि अब तीसरा नेत्र खुल ही जाएगा। अब भागने मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। अच्छा तो ये हुआ कि पार्वती जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप छोड़ दीजिए, आपका ही भाई है ये, छोड़ दो आप, छोड़ दो। जैसे तैसे शांत हो गए और वहां से भृगु मुनि तो आपने जान बचा करके भाग गए वहां से। चलो भाई अब इनकी शरण में जाएंगे तो त्रिशूल ही मिलेगा। अब और उनको अब जाना था वैकुंठ में और पहुंच गए वैकुंठ भृगु मुनि। तो वहां पे हुआ क्या कि उस समय भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जी के गोद में क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे, आराम से सो रहे थे। और गए सीधे गए और जाकर के भृगु मुनि ने छाती में जाकर के लात मार दिए, उनके चरण मार दिए जाकर गए। तब भगवान को होश आया कि अरे ऐसे उठे भृगु मुनि आ गए। तो उन्होंने आपने आसन दे दिया बैठो, तो भगवान ने उनके चरण संवाहन करने लगे और बोलने लगे कि आपका चरण तो बहुत मक्खन के जैसे कोमल है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, लोहे के समान है, आपके चरण में कोई चोट वोट तो नहीं आई। इतना ही नहीं विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा अगर आप हमें पहले ही सूचना दे देते आने की तो हम आप तैयार करके रखते है ना, कुछ आरती रखते, कुछ आपके चरण अभिषेक के लिए कुछ पानी वानी रख देते यहाँ पे, आपने ऐसे ही बिना आमंत्रित किए आगे, हमें आप माफ कर दीजिए। इस तरह से जब सुने भृगु मुनि ने और जितने भी लक्ष्मियां थी वो सेवा करने लगी उनको, तो वो समझ गए कि शरण लेने योग्य वास्तव में कौन है, एकमात्र भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो बात थी ऋषि मुनियों की, हम जैसे थर्ड क्लास लोगों की नहीं है। जो ऋषि मुनिया जिन ऋषि मुनियों ने ये सारे किया है, शरण लेने एकमात्र योग्य कौन है, वो वास्तव में संसार के प्रपंच से परे थे, माया से परे थे। उनको भी यह लगा कि शरण वास्तव में किसकी लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो लात शिव जी के छाती पे पड़ती तो क्या होता है, आप सोच लीजिए, थोड़ा कल्पना ही कर लो कि वो लात ब्रह्मा जी के छाती पे पड़ती तो क्या होता है। आप तो जिस तरह से उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, भस्म ही हो जाएंगे, सीधी बात। लेकिन देखिए भगवान विष्णु इतने दयालु है, उनके छाती पर लात पड़ने के बाद भी उन्होंने चरण संवाहन किया, उनकी यथोचित सेवा की उन्होंने, फिर बड़े विनम्र ऐसे वचन बोले कि बेचारे भृगु मुनि पिघल गए वहीं पे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में जिस प्रश्न के लिए महाराज रहुगण जा रहे थे कि शरण लेने एकमात्र योग्य कौन है, वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही है। क्यों? श्री कृष्ण से बढ़कर के दयालु कृपालु कोई नहीं है संसार में। इसका एक और श्लोक भी है, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 2 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, जिस श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव गोस्वामी जो कि शुरू में ब्रह्मवादी थे, वो आप उनके मां के पेट के अंदर काफी साल रहे वो है ना, और जब उनको कहा गया, क्योंकि समय नहीं है इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कि वो मां के पेट से निकल ही नहीं रहे थे। तब उनको कहा गया कि यदि पिताजी बोले कि आप निकलो निकलो, पिताजी ने कहा नहीं, आप स्वयं माया में फंसे हुए, मैं मुझे निकाल के मैं मुझे नहीं फंसना माया में। तो पिताजी ने कहा कि आप बोलिए, मैं किसी को बोलूं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि साक्षात द्वारिकाधीश आकर के कहे कि मुझे भगवान की माया ने नहीं पकड़ेगी, तब मैं जाकर के गर्भ से निकलूंगा मां के पेट से, नहीं तो नहीं निकलने वाला। एकदम अड़ गए, तो बेचारे परेशान हो गए, व्यासदेव परेशान हो गए, जाकर के स्वयं जाकर के द्वारिकाधीश को लेके आए और उनसे बुलवा दिया, साइन करवा दिए, अग्रीमेंट कर दिया कि भगवान को बोलना पड़ा कि मेरी माया जो है आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तब जाकर के मां के पेट में से निकले और भागे सीधे जंगल की तरफ, पूरे भाग गए, पीछे मोड़ करके देखा भी नहीं। यहां तक कि स्वयं भगवान के सत्यावेक्ष अवतार जी कौन है, व्यासदेव, हां पुत्र कर करके उनके पीछे भाग रहे थे। हाँ, वही सुखदेव गोस्वामी को भी, वो मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, भगवान की उतना कोई ज्ञान नहीं था उनको, तभी जाकर के व्यासदेव जी ने उनको शिष्य को कुछ भागवत पढ़ाए, पढ़ा करके ये श्लोक कहा जो अभी मैं श्लोक कहने जा रहा हूं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगम सया पाययत असद्वि लेवे गतिम धातृ उचितम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। ये श्लोक जब सुने सुखदेव गोस्वामी तब वापस आ गए, तब पिताजी के पास आए, फिर भागवत अध्ययन किया, तब जाकर के बाद में परीक्षित महाराज को सुनाए। ये श्लोक का अर्थ यह है कि अहो बकीयम, बकी कहते पूतना को, श्रीमद् भागवत में आया पूतना बालक हाथिनी खेचरी, उसका एक नाम खेचरी भी है, खेचरी गांव भी है, आप जाएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा में तो एक जगह आता है खेचरी, पूतना का नाम से गांव पड़ा हुआ है खेचरी गांव। तो पूतना कौन थी? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष भर करके आई थी। क्या करने आई थी? जिघंग से आ, मारने के लिए। किसको मारने के लिए? बाल शिशु, जो बालक भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। और पूतना कौन थी? उसका मतलब आचरण कैसा था? श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं उसका खान पान क्या था, रुधिर आसन, मांस खाना, खून पीना, ये उसके आहार था, प्रसाद खाना नहीं। और उसका काम क्या था? बालघातिनी, बालकों को हत्या करना, मारना, उसका काम यह था। तो यहां पे लेवे गतिम धात्री, भगवान ने दूध तो पी लिए उनके स्तन से, और दूध के साथ साथ उन्होंने क्या भी पिया, प्राण भी पी लिए। लेकिन मार तो दिए भगवान ने, लेकिन मारने के बाद में भी भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने के लिए आई है, इसको मैं एकदम नरक में ही भेज दूं इसको। अगर हमारे बुरा कोई मान लीजिए, आप हम में से किसी को कोई मारने के लिए आए और आप उसको आरती तो नहीं करोगे, पक्की बात, आप खाने के लिए भी नहीं बोलोगे, बोलोगे हो सकता है आप प्रतिकार करोगे या फिर दो चार झापड़ तो दे ही दोगे उसको। लेकिन भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने के लिए आई है, मैं इसको अलग प्रकार की गति दू, नहीं, जिस गति उनकी मां को दी है, यशोदा मैया को दी है, देवकी को दी, ऐसा ही गति किसको दिया है? उन्होंने पूतना को भी दी है। लेवे गतिम धात्री, तो कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे कौन दयालु हो सकता है संसार में, इनसे बढ़कर के कोई दयालु है क्या संसार में? तब ये श्लोक सुने तो सुखदेव गोस्वामी पिघल करके चले गए पीछे पीछे। तो हम सुन रहे थे, समय हो गया है, फिर आगे भी सुनेंगे कि जड़ भरत जी और महाराज रघुगण के प्रसंग में, बहुत अच्छा प्रसंग है, को वास्तव में ये यही जानकारी के लिए जा रहे थे कि शरण लेने योग्य एकमात्र कौन है। तो हमें तो यह पता है कि हमें शरण भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण देने वाले हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे जितने भी पापी हो, पतित हो, चाहे कैसे भी हो, वही शरण दे सकते हैं। यदि कोई कहीं से भी रिजेक्ट होकर के आ जाता है तो भगवान तो उसको शरण देते ही देते हैं। क्यों? भगवान यदि किसी का बुरा भी करना चाहे वो बुरा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो और जो भी कथा जो बचेगी हम फिर से सुनेंगे आगामी दिन में। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेद भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी लोगों।